این ریڈیو کے تازہ بلٹن کے ساتھ میں ہوں محبوب خان۔ 19 جولائی 2019 کے ساپتاہک سماچار بلٹن میں شامل ہیں۔ وشو بھر میں 82 کروڑ لوگ بھوک مری سے پیڑت، دنیا کے سامنے نئی چنوتی۔ کاہرہ کارکرم کو پربھاوی روپ سے لاگو کرنے میں یوواؤں کی مہتوپورن بھومیکا۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں سنائی گئی موت کی سزا پر پنروچار کا آدیش۔ بھارت میں جن سنکھیا وردھی در میں کچھ کمی، کیا ہیں اس کے معنی، ایک خاص انٹرویو۔ اور بھارت میں ستمبر میں ہونے والے COP14 سمیلن پر ایک خاص رپورٹ۔ دوستو، یاد دلاتے چلیں کہ روزانہ کے تازہ سماچار جاننے، ریڈیو اور ویڈیو انٹرویو اور فیچر سننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آنا نہ بھولیں۔ ہمارا پتہ ہے news.un.org/hi۔ آئیے اب سنتے ہیں سماچار وستار سے۔ دنیا بھر میں پچھلے 3 ورشوں میں بھوکمری کا شکار لوگوں کی سنکھیا میں دھیرے دھیرے بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ ورتمان میں ہر 9 میں سے ایک ویکتی بھوکمری سے پیڑت ہے۔ سنیکت راشٹر کھادیہ ایوم کرشی سنگٹھن ایف اے او نے سوموار کو ایک نئی رپورٹ اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن ان دا ورلڈ 2019 جاری کی ہے، جس میں یہ جانکاری سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے انوسار ورش 2018 میں 82 کروڑ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پریاپت بھوجن اپلبدھ نہیں تھا، جبکہ ورش 2011 میں ایسے لوگوں کی سنکھیا لگ بھگ 81 کروڑ تھی۔ ایشیا میں بھوک مری سے 51 کروڑ 29 لاکھ لوگ پیڑت ہیں، جبکہ افریقہ میں یہ سنکھیا 25 کروڑ 61 لاکھ ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 2030 کے ٹکاؤ وکاس ایجنڈا میں زیرو ہنگر یا بھوک مری کو پوری طرح ختم کرنے کے لکشے کو حاصل کرنے میں نئے آنکڑے ایک بڑی چنوتی کی اور اشارہ کرتے ہیں۔ نیو یارک میں سنیکت راشٹر مکھیالے میں اچھ استریہ راجنیتک منچ یعنی ہائی لیول پولیٹیکل فورم کی بیٹھک چل رہی ہے، اور اسی دوران یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ رپورٹ درشاتی ہے کہ افریقہ کے کچھ کھیتروں میں بھوکمری 20% تک بڑھی ہے، اور انہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر الپ پوشن کے بھی معاملے سامنے آئے ہیں۔ لاطینی امریکہ اور کیریبیائی کھیتر میں بھوکمری کی در 7% سے کم ہے، لیکن یہ بڑھ رہی ہے۔ وہیں ایشیا میں 11% جن سنکھیا الپ پوشن کا شکار ہے۔ دکشن ایشیا میں پچھلے 5 ورشوں میں اچھی پرگتی ہوئی ہے، لیکن اب بھی یہاں الپ پوشن بڑے استر پر ویاپت ہے۔ سنیکت راشٹر کے کھادیہ ایوم کرشی سنگٹھن نے اس رپورٹ کو کرشی وکاس کے لیے انتراشٹریہ فنڈ IFAD، سنیکت راشٹر بال کوش یونیسیف، وشو کھادیہ کارکرم WFP، وشو سواستھیہ سنگٹھن WHO کے ساتھ مل کر سنیکت روپ سے جاری کیا۔ سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے جن سنکھیا اور وکاس کے مدے پر کاہرہ کارکرم کو پربھاوی روپ سے لاگو کرنے میں یوواؤں کی مہتوپورن بھومیکا کو ریکھانکت کیا ہے۔ 1994 میں ہوئے کاہرہ انتراشٹریہ سمیلن کے 25 سال پورے ہونے کے اوسر پر منگلوار کو نیو یارک میں سنیکت راشٹر مہا سبھا میں ایک کارکرم کا آیوجن کیا گیا۔ اس کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے مہا سچیو گوٹیریش نے آگاہ کیا کہ کاہرہ سمیلن کے دوران جن نیتیوں کا پروگرام آف ایکشن میں الیکھ کیا گیا تھا، ان کی پراسنگکتا ٹکاؤ وکاس کے 2030 ایجنڈا میں بھی بنی ہوئی ہے۔ مہا سچیو انٹونیو گوٹیریش نے کہا کہ یوواؤں میں بدلاؤ لانے کی کشمتا ہے، وہ اپنے نرنے خود لینے میں سکشم ہیں، اور موجودہ چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے کارروائی کی مانگ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک ٹکاؤ، سماویشی اور سمان دنیا کو حاصل کرنے میں یوا بہت اہم بھومیکا نبھا سکتے ہیں۔ 1994 میں ہوئے کاہرہ سمیلن کے 2 دشک بعد 2015 میں 17 ٹکاؤ وکاس لکشیوں کو حاصل کرنے کے لیے نیا ایجنڈا شروع کیا گیا تھا۔ کاہرہ سمیلن کی وراثت کے طور پر انہوں نے جن مدوں کا ذکر کیا، ان میں اسمانتا کو دور کرنے کے لیے جدوجہد، پریاورن کشرن کو روکنا اور لینگک سمانتا کو بڑھاوا دینا شامل ہیں۔ یو این پرمکھ نے مانا کہ پچھلے 25 ورشوں کے دوران لینگک سمانتا اور مہیلاؤں کے ادھیکاروں کو بڑھاوا دینے کے سلسلے میں پرگتی ہوئی ہے، اور اس سے غریبی اور بھوکمری گھٹانے اور شکشا و سواستھیہ کو بہتر کرنے میں مدد ملی ہے۔ بھارت میں جن سنکھیا وردھی کی در میں کچھ کمی درج کی گئی ہے، اور مہیلاؤں کی پرجنن در یعنی ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने UN न्यूज़ को बताया कि 1990 के दशक में महिलाओं की प्रजनन दर 3.6 बच्चे प्रति महिला थी, लेकिन अब ये घटकर 2.2 रह गई है, जो जनसंख्या में बढ़ोतरी के नज़रिए से आदर्श लक्ष्य 2.1 के बेहद नज़दीक है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2027 में विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह का कहना है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ भारत में जनसंख्या की बनावट में भी बदलाव आ रहा है और आने वाले वर्षों में बूढ़ों की संख्या में वृद्धि देखी जाएगी। इस चुनौती से निपटने के लिए सही नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह से खास बातचीत की।
भारत में जनसंख्या को लेकर काफी अच्छे आंकड़े हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हुई है। 2001 सेंसस के कंपैरिजन में 2001 एंड 2011 सेंसस में लगभग 4% अंक की कमी आई है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो दर है वो बहुत धीमी हो गई है। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एक आंकड़ा होता है कि एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसमें 1994 में 3.6 का आंकड़ा था, वो घट के अब 2.2 पे आ गया है। और इसको 2.2 को उस संदर्भ में देखने की जरूरत है जिसमें कि 2.1 जो होता है वो एक आदर्श TFR माना जाता है, और उसको हम बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल, कि जितने लोग हैं उतने ही रहें, उनको वो उनकी बदली हो जाए तो वो है। तो इसका मतलब ये कहने की है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग जो है 2.1 के आसपास पहुंचने वाला है, विच इज अगेन मतलब एक अच्छी चीज है।
तो कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में, इसके क्या मायने होंगे और इसे किस तरह देखा जाना चाहिए?
ये सही बात है। इसका एक और पहलू है, अगर पीछे से हम देखना चाहें, यही UN के जो प्रोजेक्शंस थे, पहले इन्होंने बताया था कि 2021 में भारत चीन को पार कर जाएगा। ये हर साल प्रोजेक्शन जो है रिवाइज होते हैं, फिर ये आया कि 2024 में, फिर 2026 में, आप कह रहे हैं कि 2027 में भारत चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जो है रिवाइज करना पड़ रहा है प्रोजेक्शंस, और उसका एक मेन कारण ये है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मैं कह रहा था कि घट के 2.2 आ गई है, जितनी हम लोगों ने अंदाजा लगाया था उससे तेजी से कम हो रही है। इसीलिए प्रोजेक्ट हम पार तो कर जाएंगे, लेकिन जितना पहले पार करना चाहिए था उसके मुकाबले अब हम बाद में पार करेंगे। अब ये है कि क्या सिर्फ हम पूरी जनसंख्या को देखें या जनसंख्या की जो बनावट है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जनसंख्या की जो बनावट है, और बनावट से मेरा मतलब ये है कि उसमें कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने वाली जो आयु वर्ग है उसमें है, और कितने बूढ़े हैं, तो अभी भारत उस स्थिति में है कि हमारे पास बच्चों की संख्या कम हो रही है, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से अभी नहीं बढ़ रही है, और उसके चलते हमारे पास जो एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो 15 से 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, कामकाजी जो आयु वर्ग है, उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बच्चे अभी जो है, जैसे हम एजुकेशन में देखें, एनरोलमेंट बढ़ा है, ज्यादा सालों तक जो स्कूल्स में बच्चे और युवा रह रहे हैं, हम इस बड़े आयु वर्ग का देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में कैसे जो है पॉजिटिव वे में उसका वो कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत तो ये है कि सबको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको जो है हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए, खासकर जो युवा एडोलेसेंट और यंग पीपल हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ हेल्थ तक न रह के उनकी जो समस्याएं, जैसे मेंटल हेल्थ इंडिया में एक बड़ा इशू उभर के आ रहा है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूरी होनी चाहिए, और इस तरह से पूरी होनी चाहिए नॉन जजमेंटल वे में। दूसरा साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान हो उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे, और उनको लिंकेजेस क्रिएट किए जाएं जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर पुनर्विचार किए जाने का आदेश दिया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को हिरासत में लिए जाने और मुकदमा चलाए जाने के मामले में पाकिस्तान ने कौंसुलर संबंधों पर वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत तय किए गए दायित्वों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वियना संधि के तहत देशों के बीच राजनयिक संबंध के नियम तय किए गए हैं। बुधवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने मौत की सजा पर लगी रोक को बरकरार रखने का आदेश दिया है ताकि उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने की प्रभावी ढंग से समीक्षा हो सके और सजा पर पुनर्विचार हो। नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित कोर्ट का कहना है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया और भारत सरकार को भी उनसे संपर्क नहीं साधने दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसने कुलभूषण जाधव मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 17 जुलाई को निर्णय सुनाया। कोर्ट का फैसला अंतिम और बाध्यकारी है और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि मौत की सजा को अमल में तब तक न लाया जाए जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। पाकिस्तान के मुताबिक कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षाकर्मियों ने 3 साल पहले गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का आरोप है कि बलूचिस्तान प्रांत में भारत अलगाववादियों को भड़का रहा है और कि कुलभूषण जाधव जासूसी और पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। भारत ने कुलभूषण जाधव के जासूस होने से इनकार किया है और उन्हें ईरान में अगवा किए जाने का आरोप लगाया है जहां बताया गया है कि वो अपना व्यवसाय चला रहे थे। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान में सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दर्ज कराया था।
कृषि योग्य भूमि का मरुस्थल में बदलना एक बड़ी चुनौती है जिससे बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयासों के तहत इस साल सितंबर में भारत में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन पर और ज्यादा जानकारी देने के इरादे से दिल्ली में हाल ही में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सुनिए दिल्ली से हमारी सहयोगी अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप के 14वें सत्र को लेकर दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD के प्रबंधक सचिव इब्राहिम चियाओ ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के 15वें लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन की वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी कुल भूमि में से 1/4 इस्तेमाल के लायक नहीं बची है।
75% of the land on earth has been somehow modified and has been altered by human activities. Now we have a growing population that we need to feed, and by the middle of the century we need to produce twice as much food as today. So as to feed that additional number of people coming, but also to feed a population that whose lifestyle is changing.
UNCCD के प्रबंधक सचिव इब्राहिम चियाओ के शब्द। भारत में स्थिति काफी खराब है। दुनिया की 18% आबादी का घर माने जाने वाले भारत का 2,80,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र यानी लगभग 30% इलाका भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन का शिकार है। 2015 में बॉन चैलेंज के तहत भारत ने स्वेच्छा से 2020 तक वनों के नष्ट होने से क्षय हुई भूमि की पुनः बहाली का प्रण लिया था। UNCCD के उप सचिव प्रदीप मोंगा ने बताया कि सितंबर में होने वाला COP 14 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पहला आउटकम होगा कि एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगी जो सब मिनिस्टर्स मिलकर करेंगे ड्यूरिंग द हाई लेवल सेगमेंट जो 9 और 10 सितंबर को होगा। सेकेंड, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में एक लेगेसी प्रोग्राम होगा। जो देश कॉप को होस्ट करता है, ज़्यादातर सभी देश, सब जगह एक लेगेसी प्रोग्राम लॉन्च होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लैंड रेस्टोरेशन के ऊपर एक लेगेसी प्रोग्राम होगा जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक नेशनल कंपोनेंट होगा और एक इंटरनेशनल विंडो होगी, और तीसरा नैरेटिव बनेगा एक पूरा, जैसे बाकी कन्वेंशन के लिए एक लैंड डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए एक माहौल बनेगा, क्योंकि लैंड लिंक करती है वाटर के साथ, लैंड लिंक करती है फूड सिक्योरिटी के साथ, लैंड लिंक करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लैंड लिंक करती है हाउसिंग के साथ, लैंड लिंक करती है एनर्जी के साथ। और इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट।
UNCCD के उप सचिव प्रदीप मोंगा के शब्द। मरुस्थलीकरण रोकने के अपने प्रयासों के तहत भारत ने पिछले ही महीने नष्ट हुए वनों की बहाली के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के 5 राज्यों में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस संबंध में अगले महीने संयुक्त राष्ट्र की जलवायु विज्ञान संबंधी इकाई और जलवायु विज्ञान पर भारत सरकार का आंतरिक सरकारी पैनल एक रिपोर्ट भी जारी करेगा।
तो आज के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में इतना ही। महबूब खान को इजाजत। हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, जिसका पता है news.un.org/hi। यहाँ पर आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली भरपूर सामग्री मिलेगी।